दुनिया में राइद सारे दीन गीता के फासले पर मौजूद महस बरअक्स आवाज हैं। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, कबीर वगैरह की अकीदत से लबरेज रियाजत के उसूलों का आला तरीन इजहार गीता है। गीता के वही सीडी के खूबसूरत फूल आप सबके सामने खुद शनासी के लिए पेश खिदमत है।
ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता।
अथ सप्तमो अध्याय, सातवां बाब। गुज़िश्ता अबवाब में उमूमन गीता के खास खास सभी सवालात पूरे हो गए हैं। बेगरज अमली जोग, इल्मी जोगे अमल, यज्ञ की शक्ल और उसका तरीका, जोग की हकीकी शक्ल और उसका समराह, अवतार, दोगला, अबदी। खुद शनास अजीम इंसान के लिए भी अवामी फलाह के लिए अमल करने पर जोर, जंग वगैरह पर तफसील से जिक्र किया गया। अगले अबवाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने उन्हीं से जुड़े हुए तमाम तकमिला सवालात को उठाया है कि जिनका हल और आगाज इबादत में मददगार साबित होगा। छठे बाब के आखिरी श्लोक में जोग के मालिक ने यह कहकर खुद सवाल खड़ा कर दिया कि जो जोगी मदगते नांतरात्मना, मुझ में अच्छी तरह कायम बातिन वाला है, उसे मैं बेहद अफजल जोगी मानता हूं। रूहे मुतलक में अच्छी तरह कयाम क्या है? बहुत से जोगी हजरात रूहे मुतलक को हासिल तो कर लेते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। जरा भी कसर ना रह जाए, ऐसी हालत कब आएगी? मुकम्मल तौर पर रूहे मुतलक का इल्म कब होगा, कब होता है? इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचा,
मैया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
पार्थ, तू मुझ में रागिब हुए मन वाला, बाहरी नहीं बल्कि मदाश्रयः यानी मेरा हामिल होकर जोग में लगा हुआ यानी छोड़कर नहीं, मुझको जिस तरह बिला शक शुभा जानेगा उसको सुन, जिसे जानने के बाद जरा सा भी शक ना रह जाए। शौकतों की उस मुकम्मल जानकारी पर फिर जोर देते हैं।
ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते।
मैं तुझे इस खास इल्म के साथ इल्म के बारे में मुकम्मल तौर से बताऊंगा। तकमिला दौर में यज्ञ जिसकी तकलीफ करता है, उस लाफानी उंसुर के हुसूल के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम इल्म है। उंसुरे आला रूहे मुतलक की रूबरू जानकारी का नाम खुसूसी इल्म है। अजीम इंसान को एक साथ हर जगह काम करने की जो सलाहियत हासिल होती है वो मखसूस इल्म यानी विज्ञान है। किस तरह वो माबूद एक साथ सबके दिल में काम करता है, किस तरह वो उठाता और बैठाता और दुनियावी फसाद से निकालकर मंजिले मकसूद तक का फासला तय करा लेता है, उसके इस तौर तरीके का नाम मखसूस इल्म है। इस खुसूसी इल्म के साथ इल्म को तफसील से बताऊंगा, जिसे जानकर यानी सुनकर नहीं دنیا میں اور کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں رہ جائے گا، جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔
منشاناں سہسریشو کشچدیتتی سدھے یتتامپی سدھانام کشچنمام ویتی تتوتہ۔
ہزاروں انسانوں میں کوئی ہی انسان میرے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ان کوشش کرنے والے جوگیوں میں بھی کوئی ہی انسان مجھے انصر یعنی بدیہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے۔ اب مکمل انصر ہے کہاں؟ ایک جگہ مادی شکل میں ہے یا ہر جگہ جلوگر ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں،
بھومیراپو نلو وایو خم منو بدھیریو اہنکار ایتیم می بھنا پرکرتی رشتدھا۔
ارجن، زمین، پانی، آگ، ہوا اور آسمان و من، عقل و غرور، ایسے یہ آٹھ قسموں والی میری قدرت ہے۔ یہ اشٹدھا مول پرکرتی یعنی آٹھ عناصر والی بنیادی قدرت ہے۔
اپریمتستوانیا پرکرتیم ودھی می پرا جیو بھوتا مہاباہو ییدن دھاریتے جگت۔
ایمم یعنی یہ آٹھ قسموں والی میری غیر ماورا قدرت ہے یعنی جامد قدرت ہے۔ بازوے عظیم ارجن، اس سے دوسرے کو ذی شکل یعنی ماورا یعنی باحث قدرت سمجھ، جس کے احاطے میں پوری کائنات ہے، وہ ہے ذی روح۔ ذی روح بھی قدرت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے وہ بھی قدرت ہی ہے۔
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा۔
अर्जुन، ऐसा समझ के तमाम जानदार एतद्योनीनि इन अजीम कुदरतों से मावरा اور غیر ماورا قدرتوں سے ہی پیدا ہونے والے ہیں۔ یہی دونوں واحد شکلیں یعنی یونیاں ہیں۔ میں تمام دنیا کی تخلیق اور قیامت یعنی پرلے کی شکل ہوں، یعنی اصل بنیاد ہوں۔ دنیا کی تخلیق مجھ سے ہے، یعنی قیامت تحلیل بھی مجھ میں ہے۔ جب تک قدرت موجود ہے تب تک میں ہی اس کی تخلیق ہوں، اور جب کوئی عظیم انسان قدرت کا پار پا لیتا ہے تب ہی میں یعنی مہا پرلے عظیم قیامت بھی ہوں، جیسا کہ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور قیامت کے سوال کو انسانی معاشرے نے تجسس کے ساتھ دیکھا ہے۔ دنیا کی مختلف شریعتوں میں اسے کسی نہ کسی طرح سمجھنے کی کوشش چلی آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں دنیا ڈوب جاتی ہے، تو کسی کے مطابق سورج اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ زمین جل جاتی ہے۔ کوئی اسی کو قیامت کہتا ہے کہ اسی دن سب کو ان کے اعمال کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو کوئی روز بروز کی قیامت۔ کسی وجہ سے قیامت کا حساب و کتاب لگانے میں مشغول ہے۔ لیکن جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق قدرت ابدی ہے، بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوئی۔ ہندوستانی مذہبی کتابوں کے مطابق موری سے اول منو نے قیامت کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ 11 عابدوں نے مچھلی کی سنگ میں کشتی باندھ کر ہمالے کی ایک اونچی چوٹی پر پناہ لی تھی۔ कारसाज श्री कृष्ण की नसीहतों और जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली उनके दौर की शरीयत भागवत में मुरुकंड मुनि के फर्जंद मार्कंड जी के जरिए कयामत प्रलय का चश्मदीद बयान पेश किया गया है। वो हिमालय के शुमाल की जानिब पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12वीं फसल के 8वीं और 9वीं बाब के मुताबिक शौनक वगैरह आबिदों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडे जी अजीम कयामत प्रलय के दिन बरगद के पत्ते पर बंदा परवर बाल मुकुंद के दीदार का शर्फ हासिल किया था, लेकिन वो तो हमारे ही खानदान के थे, हमसे कुछ ही वक्त पहले हुए थे। उनके जन्म के बाद ना कोई कयामत हुई और ना दुनिया ही डूबी, सब कुछ जैसे का तैसा है, तब उन्होंने कैसे कयामत देखी? सूत जी ने बताया कि मार्कंडे जी की इल्तिजा से खुश होकर नर नारायण जो एक अवतार हैं ने उन्हें अपना दीदार कराया। मार्कंडे जी ने कहा कि मैं आपकी वो कारसाजी देखना चाहता हूं जिसके जेरे असर ये रूह बेशुमार शक्लों यानी योनियों में चक्कर लगाती है। भगवान नर नारायण ने उनकी ये गुजारिश मंजूर की और एक रोज जब मुनि अपने खानखा में माबूद के गौर फिक्र में डूब रहे थे तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों तरफ से समंदर उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें निहंग यानी मगरमच्छ छलांगे लगा रहे थे। उनकी गिरफ्त में आबिद मार्कंडे भी आ रहे थे। वो इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आसमान, सूरज, जमीन, चांद, जन्नत, तमाम सितारे सभी इस समंदर में डूब गए। इतने में मार्कंडे जी को बरगद का दरख्त और उसके पत्ते पर एक तिफ्ल दिखाई पड़ा। सांस के साथ श्री मार्कंडे जी भी उस तिफ्ल के पेट में चले गए और अपनी खानखाह हल्के सूरज के साथ कायनात को जिंदा पाया और फिर सांस के साथ उस तिफ्ल के पेट से वो बाहर निकल आए। आंखें खुलने पर आबिद मार्कंडे ने अपने को उसी खानखा में अपने ही आसन पर मौजूद पाया। जाहिर है कि करोड़ों साल की यादें रब के बाद आबिद मार्कंडे जी ने खुदाई मंजर को अपने मन में देखा, तजर्बे में देखा। बाहर सब कुछ जैसे का तैसा बरकरार था, लिहाजा तहलील कयामत प्रलय जोगी के बातिन में माबूद से मिलने वाला एहसास है। याद इलाही के तकमिला दौर में जोगी के दिल में दुनिया का असर खत्म होकर गैर मरई माबूद ही बाकी बचता है। यही कयामत है, बाहर कयामत नहीं होती। अजीम कयामत जिस्म रहते ही वहदानियत की गैर मरई हालत है। ये अमली है, सिर्फ अक्ल से फैसला लेने वाले शक को ही पैदा करते हैं। चाहे हम हों या आप, इसी पर आगे देखें।
मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणाइव।
धनंजय, मेरे सिवा मुतलक भी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये तमाम दुनिया जवाहर की माला की तरह मेरे में गुथी हुई है तो, लेकिन जानेंगे कब? जब यानी इस बाब की अव्वल श्लोक के मुताबिक ला शरीक रकबत यानी अकीदत से मेरा हामिल होकर जोग में उसी तरह से लग जाए, इसके बगैर नहीं। जोग में लगना जरूरी है।
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु।
कौन ते? पानी में मैं लज्जत हूं, चांद और सूरज में रोशनी हूं, सारे वेदों में ओमकार हूं, ओ जमा अहम जमाकार, खुद का आकार, खुद की शक्ल हूं, आसमान में आवाज और इंसानों में उसकी मर्दानगी हूं, और मैं
पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
जमीन में पाक महक और आग में जलाल हूं, सारे जानदारों में उनकी जिंदगी हूं, और रियाजत कशों में उनकी रियाजत हूं।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्।
पार्थ, तू सारे जानदारों की अबदि वजह यानी तुख्म मुझे ही जान। मैं अकलमंदों की अकल जलाली हजरात का जलाल हूं। इसी तसलसल में जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं,
बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।
हे भरत खानदान में अफजल अर्जुन, मैं ताकतवरों की ख्वाहिश और रगबत से खाली ताकत हूं। दुनिया में सब ताकतवर ही तो बनते हैं, कोई मेहनत मशक्कत करता है यानी दंड बैठक लगाता है, कोई आइटमी ताकत इकट्ठा करता है, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ख्वाहिश और रगबत से मावरा जो हकीकी ताकत है वो मैं हूं। वही हकीकी ताकत है सारे जानदारों में। दीन के मुताबिक ख्वाहिश मैं हूं। आला माबूद रूह मुतलक ही वाहिद दीन है जो सबको संभाले हुए है। जो दायमी रूह है वही है जो उससे मुताबिकत रखने वाली ख्वाहिश है, मैं हूं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे हुसूल की ख्वाहिश कर। सब ख्वाहिशात की तो ममानियत है, लेकिन उस रूह मुतलक को हासिल करने की ख्वाहिश जरूरी है, वरना आप वसीले वाले अमल में नहीं लग पाएंगे। ऐसी ख्वाहिश भी मेरा करम है।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि।
और भी जो मलकाते फाजिला से पैदा होने वाले एहसासात हैं, जो मलकाते रद्दिया, जो मलकात मजमूम से पैदा होने वाले एहसासात हैं, उन सब को तू मुझसे ही पैदा होने वाले हैं ऐसा समझ, लेकिन हकीकत में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है, क्योंकि ना मैं उनमें गुम हूं और ना वो ही मेरे अंदर दाखिल हो पाते हैं, क्योंकि मुझे अमल से लगाव नहीं है, मैं ला मुलविस हूं, मुझे उनमें कुछ हासिल नहीं करना है, लिहाजा मुझ में दाखिल नहीं हो पाते। ऐसा होने पर भी जिस तरह रूह की मौजूदगी से ही जिस्म को भूख और प्यास लगती है, रूह को अनाज या पानी से कोई वास्ता नहीं है, उसी तरह कुदरत रूह मुतलक की मौजूदगी में ही अपना काम कर पाती है। रूह मुतलक उसकी सिफात और कामों से लाताल्लुक रहता है।
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमौ व्ययम्।
मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया और मलकाते मजमूम, इन तीनों सिफात के जेर असर ये सारी दुनिया उससे फरीफ्ता हो रही है। इस वास्ते लोग इन तीनों सिफात से मावरा मुझ लाफानी को उनसुर से अच्छी तरह नहीं जानते। मैं इन तीनों सिफात से मावरा हूं, यानी जब तक जरा सी भी सिफात की परत मौजूद है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वो राही है। और
दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतांतरन्तिते।
तीनों सिफात से मुजय्यन मेरी यह हैरत अंगेज कारसाजी बेहद दुश्वार है, लेकिन जो इंसान मुझे ही मुसलसल याद करते हैं वो लौ से दुनिया पर फतेह हासिल कर लेते हैं। ये कारसाजी है तो रूहानी, लेकिन अगरबत्ती जलाकर इसकी इबादत न करने लगे इससे नजात पाना है।
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः।
जो मुझे लगातार याद करते हैं वो जानते हैं, फिर भी लोग मेरी याद से गाफिल रहते हैं। फितरत के जरिए जिनके इल्म का अगवा कर लिया गया है, जो दुनियावी खसलत के हामिल हैं, इंसानों में बदजात, ख्वाहिश, गुस्सा वगैरह बुरे कामों को करने वाले जाहिल लोग मुझे नहीं याद करते, तो याद करता कौन है।
चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
ऐ भरत खानदान में अफजल अर्जुन, सुकृतिन अफजल यानी मुअय्यना अमल, यानी जिसके समरे में शर्फ का हुसूल हो उसको करने वाले, अर्थार्थी यानी ख्वाहिशमंद, आर्त यानी दुख दर्द से छुटने की ख्वाहिश वाले, जिज्ञासु यानी जाहिरी तौर से जानने का तजस्सुस वाले, और ज्ञानी यानी जो दाखिल होने की हालत में है, ये चारों तरह के अकीदतमंद मुझे याद करते हैं। अर्थ यानी सरमाया वो चीज है जिससे हमारे जिस्म ख्वाह मुतालिकात पूरी होती हो, लिहाजा सरमाया ख्वाहिशात ये सब कुछ पहले माबूद के जरिए पूरी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूरा करता हूं, लेकिन इतना ही हकीकी सरमाया नहीं है। रूहानी दौलत ही हमेशा कायम रहने वाली दौलत है, यही सरमाया अर्थ है। दुनियावी सरमाया को पूरा करते करते माबूद हकीकी सरमाया को रूहानी दौलत की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इतने से ही मेरा मोतकिद बामसर्रत नहीं होगा, लिहाजा वो रूहानी दौलत भी उसे अता करने लगते हैं। लोक लाहु पर लोक निबाहु, इस दुनिया में मुनाफा और आलमे बाला में गुजारा, ये दोनों माबूद की चीजें हैं, अपने बंदे को खाली नहीं रहने देते। आर्त गमगुसार जो गमजदा हो, मुतजस्सिस जिज्ञासु पूरे तौर से जानने की तजस्सुस रखने वाले मुतजस्सिस लोग मुझे याद करते हैं। रियाजत की पुख्ता हालत में दीदार यानी बदी ही दीदार के मकाम पर पहुंचे हुए आलिम हजरात भी मुझे याद करते हैं। इस तरह के चार तरह के मोतखिद हैं जो मुझे याद करते हैं, जिनमें आलिम अफजल है, यानी आलिम भी बंदा ही है।
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः।
अर्जुन, उनमें भी जो हमेशा के लिए मुझ में तहलील है, पुरखलूस बंदगी वाला आलिम खुसूसी है, क्योंकि बड़ी ही दीदार के साथ इल्म रखने वाले आलिम को मैं बेहद महबूब हूं, और वो आलिम भी मुझे बेहद अजीज है, वो आलिम मेरा ही हम मर्तबत है।
उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्।
अगरचे ये चारों तरह के बंदे रवादार ही हैं, यानी कौन सी रवादारी कर दी, क्या आपकी बंदगी से माबूद को कुछ हासिल हो जाता है, क्या माबूद में कोई कमी है जिसे आपने पूरी कर दी? नहीं, दर हकीकत वही रवादार है जो अपनी रूह को जहन्नम में ना पहुंचाए, जो उसकी नजात के लिए आगे बढ़ रहा है। इस तरह ये सब रवादार हैं, लेकिन आलिम तो मुजस्सिम मेरी शबीह ही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज आलिम बंदा बेहतरीन अंजाम की शक्ल में मेरे अंदर मकाम पा चुका है, यानी वो मैं हूं, वो मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी पर फिर जोर देते हैं कि
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः।
रियाज करते करते मुख्तलिफ पैदाइशों के आखिर में हुसूल वाले पैदाइश में दीदार नसीब आलिम सब कुछ माबूद ही है, इस तरह मुझको याद करता है, वो आबिद बेहद कामयाब है, वो किसी माबूद का मुजस्समा नहीं गढ़वाता, बल्कि दाखिली तौर पर अपने अंदर उस आला माबूद की रिहाइश पाता है। उसी आलिम मर्द कामिल को श्री कृष्ण रमज शनास भी कहते हैं। उन्हीं अजीम इंसानों से खारिजी माशरे में भलाई मुमकिन है। इस तरह के रूबरू रमज शनास अजीम इंसान श्री कृष्ण के अल्फाज में बेहद कमयाब हैं। जब शरफ और दुनियावी तअय्युशात यानी नजात और ऐश दोनों ही माबूद से हासिल होते हैं, तब सभी को वाहिद माबूद को ही याद करना चाहिए, फिर भी लोग उन्हें याद नहीं करते। क्यों? श्री कृष्ण के ही अल्फाज में,
कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।
वो रमज शनास मर्द कामिल या रूह मुतलक ही सब कुछ है, लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐशो इशरत की ख्वाहिशात के जरिए लोगों की अक्ल अगवा कर ली गई है, लिहाजा वो अपनी खसलत यानी मुख्तलिफ पैदाइशों से हासिल किए गए तासुरात के जेर असर तरगीब पाकर मुजरूह मुतलक से अलग दूसरे देवताओं और उन्हें हासिल करने के लिए मुरवजा रिवाजों की पनाह लेते हैं। यहां दूसरे देवताओं का जिक्र पहली बार आया है।
यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति त तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
ख्वाहिश वाला अकीदतमंद जिस जिस देवता की मुजस्समे की अकीदत के साथ इबादत करना चाहता है, मैं उसी देवता में उसकी अकीदत को मुस्तकिल करता हूं। मैं मुस्तकिल करता हूं क्योंकि देवता नाम की कोई चीज होती तब तो वो देवता ही इस अकीदत को मुस्तकिल करता।
सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्वितान्।
वो इंसान उस अकीदत का हामिल होकर उस देवता की मुजस्समे की इबादत में मुस्तईद होता है और उस देवता के वसीले से मेरे ही जरिए बनाए गए उन ख्वास्ता ऐशो इशरत को बिला शुभा हासिल करता है। ऐशो इशरत कौन अता करता है? मैं ही अता करता हूं। उसकी अकीदत का समरा है ऐश, ना कि किसी देवता की देन। लेकिन वो समरा तो हासिल कर ही लेता है, फिर इसमें बुराई क्या है? इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं,
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्तायान्ति मामपि।
लेकिन उन कम अक्ल वालों को मिलने वाला वो समरा फानी है। आज समरा है तो लुत्फ उठाते उठाते खत्म हो जाएगा, लिहाजा फानी है। देवताओं की इबादत करने वाले देवताओं को हासिल करते हैं और देवता भी फानी है। देवताओं से लगाव दुनिया की सारी चीजें तगैयुर पजीर और खत्म होने वाली हैं। मेरा मोतकिद मुझे हासिल करता है। जो गैर मरई, जो अकीदत की इंतहा है, उस आला सुकून को हासिल करता है। बाप तीन में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ के जरिए तुम लोग देवताओं यानी रूहानी दौलत का इजाफा करो। जैसे जैसे रूहानी दौलत में इजाफा होगा वैसे वैसे तुम्हारी तरक्की होगी। सिलसिलेवार तरक्की करते करते आला शरफ को हासिल कर लो। यहां देवता इस रूहानी दौलत का अम्बोह है जिससे आला माबूद रूहे मुतलक की मर्तबत को हासिल किया जाता है। रूहानी दौलत नजात के लिए है जिसके 26 निशानात का बयान गीता के 16वें बाब में किया गया है। देवता मन के दरमियान आला माबूद रूहे मुतलक के खासे को हासिल करने वाली नेक सिफात का नाम है। थी तो ये अंदर की चीज, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने अंदर की चीज को बाहर देखना शुरू कर दिया, मुजस्समों को गढ़ लिया। इबादत के तमाम तौर तरीके यानी कर्म कांड बना डाले और हकीकत से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस गुमराही का हल मजकूरा बाला 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार दूसरे देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवताओं का कोई वजूद नहीं होता। लोगों की अकीदत जहां सर झुकाती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी अकीदत की ताईद करता हूं और मैं ही वहां समरा भी देता हूं। वो समरा भी फानी है। सम्राट खत्म हो जाते हैं, देवता खत्म हो जाते हैं और देवताओं का परस्तार भी खत्म हो जाता है। जिनका इरफान खत्म हो गया है वो जाहिल ही दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं। श्री कृष्ण यहां तक कहते हैं कि दूसरे देवताओं की इबादत करने का उसूल ही गैर मुनासिब है। आगे देखें बाब 19 श्लोक नंबर 23।
अन्तवत्तु फलं तेषां अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्।
अगरचे जब देवताओं की शक्ल में देवता नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो समरा मिलता है वो भी फानी है, फिर भी सब लोग मुझे याद नहीं करते, क्योंकि कम अक्ल इंसान, जैसा गुज़िश्ता श्लोक में आया कि ख्वाहिशात के जरिए जिनकी अक्ल का अगवा हो गया है, वो मेरे बेहतरीन लाफानी और आला असर को अच्छी तरह नहीं जानते, लिहाजा वो मुझ गैर मरे इंसान को मुजस्समा इंसान वाले एहसास को हासिल हुआ मानते हैं। यानी श्री कृष्ण भी इंसानी जिस्म को कबूल करने वाले जोगी थे, जोग के मालिक थे। जो खुद जोगी हो और दूसरों को भी जोग अता करने की जिसमें सलाहियत हो, उसे जोग का मालिक यानी योगेश्वर कहते हैं। रियाजत के सही दौर में पड़कर रफ्ता रफ्ता तरक्की होते होते अजीम इंसान भी उसी आला एहसास में मकाम पा लेते हैं। जिस्मानी इंसान होते हुए भी वो इसी गैर मरई हकीकी शक्ल में कायम हो जाते हैं, फिर भी ख्वाहिशात से मजबूर कम अक्ल वाले उन्हें आम आदमी ही मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो ये भी पैदा हुए हैं, बंदा नवाज कैसे हो सकते हैं, इन बेचारों का कसूर भी क्या। नजर डालते हैं तो जाहिरी तौर से जिस्म ही दिखाई पड़ता है, वो अजीम इंसान के हकीकी शक्ल को देख क्यों नहीं पाते। इस बारे में जोग के मालिक श्री कृष्ण से ही सुने।
नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
आम इंसान के लिए फितरत एक पर्दा है जिसके जरिए रूह मुतलक पूरे तौर से मख्फी है। जोग की रियाजत समझकर वो इसमें लगा हुआ होता है। इसके बाद जोग की फितरत यानी योग माया यानी जोग का अमल भी एक पर्दा ही है। जोग का आगाज करते करते उसकी इंतहा जोग के रास्ते पर चलने की सलाहियत आ जाने पर वो मख्फी हुआ, रूह मुतलक जाहिर होता है। जोग के मालिक कहते हैं कि मैं अपनी जोग की फितरत से ढका हुआ हूं, सिर्फ जोग की पुख्ता हालत वाले ही मुझे हकीकी शक्ल में देख सकते हैं, मैं सबके लिए जाहिर नहीं हूं। लिहाजा ये कम अक्ल इंसान मुझ जन्म से आरी यानी जिसे अब पैदा नहीं होना है, लाफानी यानी जिसको मौत नहीं आती है, गैर मरई शक्ल यानी जिसे फिर जाहिर नहीं होना है, को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह इंसान मानता था। आगे उन्होंने नजर अता की तो अर्जुन आजीजी से कहने लगा, इल्तिजा करने लगा। दर हकीकत गैर मरई के मकाम पर फाइज अजीम इंसान को पहचानने में हम लोग उमूमन नाबीना ही हैं। आगे फरमाते हैं,
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।
अर्जुन, मैं माजी हाल और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम जानदारों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, क्यों नहीं जान पाता।
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप।
भरत के खानदान वाले अर्जुन, तलब और कीना यानी हसद व अदावत वगैरह वबाल की फरिश्तगी से दुनिया के तमाम जानदार बे इंतहा फरीफ्ता हो रहे हैं, लिहाजा मुझे नहीं जान पाते तो क्या कोई जानेगा ही नहीं, जो के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं।
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः।
मगर इफादी अमल यानी जो बार बार जन्म लेने का खात्मा करने वाला है, जिसका नाम करने लायक अमल, मुअय्यना अमल, यज्ञ का तरीके कार कहकर बार बार समझाया है, उस अमल को करने वाले जिन बंदों का गुनाह खत्म हो गया है, वो हसद अदावत वगैरह वबाल की फरिश्तगी से अच्छी तरह आजाद होकर अज्म में अटल रहकर मुझे याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं?
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्।
जो मेरी पनाह में आकर ज़ईफी और मौत से नजात पाने के लिए कोशिश करते हैं, वो इंसान उस माबूद को, मेरी रूहानियत को और मुकम्मल अमल को जानते हैं, और इसी तसलसल में
साधि भूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः।
जो इंसान मखसूस जानदार यानी अधिभूत, मखसूस देवता यानी अधिदैव और मखसूस यज्ञ यानी अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं, मुझ में मुजमिर तबीयत वाले वो इंसान आखिरी वक्त में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही कायम रहते हैं और मुझे हमेशा ही हासिल रहते हैं। 26वें और 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि वो फरिश्तगी में जकड़े हुए हैं, लेकिन तू उस फरिश्तगी से छुटने के लिए कोशा है, वो एक मुकम्मल माबूद है, दो मुकम्मल रूहानियत, तीन मुकम्मल अमल, चार मुकम्मल मखसूस जानदार, पांच मुकम्मल मखसूस देवता, छह मुकम्मल मखसूस यज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, यानी इन सब का समरा मैं मुर्शिदे कामिल हूं, वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। मगज़े सुखन निष्कर्ष। इस सातवें बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बताया कि ला शरीक अकीदत से मेरी सुपुर्दगी में आकर, मेरी पनाह में होकर जो जोग में लगता है वो पूरी तरह से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में से कोई शाज ही कोशिश करता है, और कोशिश करने वालों में शाज ही कोई जानता है। वो मुझे मादी शक्ल में एक ही जगह पर नहीं बल्कि हर जगह जारी वो सारी देखता है। 8 किस्मों वाली मेरी जामिद कुदरत है, और उसके माबैन जी रूह की शक्ल मेरी जी हिस कुदरत है, उन्हीं दोनों के तवस्सुत से पूरी दुनिया खड़ी है। जलाल और कुवत मेरे ही जरिए हैं, हसद और ख्वाहिश से खाली ताकत और दीन के मुताबिक ख्वाहिश भी मैं ही हूं। जैसा कि सारी ख्वाहिशात के लिए तो मुमानियत है, लेकिन मुझे हासिल करने के लिए ख्वाहिश कर, ऐसी ख्वाहिश का पैदा होना मेरा ही रहम करम है। सिर्फ रूह मुतलक को हासिल करने की ख्वाहिश ही दीनी ख्वाहिश है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों सिफात से मुबर्रा हूं। मैं आला माबूद का लम्स करके उसके आला एहसास में कायम हूं, लेकिन ऐश में डूबे जाहिल इंसान सीधे मुझको न याद कर दूसरे देवताओं को याद करते हैं, दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, दरख्त, जिसकी भी वो इबादत करना चाहते हैं, उसी में उनकी अकीदत को मैं ही तस्दीक करता हूं, उसके पर्दे में खड़ा होकर मैं ही समरा देता हूं, क्योंकि ना वहां कोई देवता है न किसी देवता के पास कोई ऐश ही है। लोग मुझे आम आदमी समझकर नहीं याद करते, क्योंकि मैं जोग के तरीके कार के जरिए पर्दे में हूं। आगाज करते करते जोग की फितरत का पर्दा हटा लेने वाले ही मुझ जिस्म वाले को भी गैर मरई शक्ल से जानते हैं, दूसरी हालत में नहीं। मेरे मोतकिद चार तरह के हैं: दौलत के ख्वाहिशमंद, बेकरार, मुतजस्सिस और आलिम। गौर व फिक्र करते करते मुख्तलिफ पैदाइशों के दौर से गुजरते हुए आखिरी जन्म में हुसूल वाला आलिम मेरा ही हम मर्तबत है। यानी मुख्तलिफ पैदाइशों से गौर व फिक्र कर इस शक्ल रब्बानी को हासिल किया जाता है। हसद व अदावत की फरीफ्तगी से घिरे हुए इंसान मुझे कभी भी नहीं जान सकते, लेकिन हसद अदावत के फरेब से अलग होकर जो मुअय्यना अमल यानी जिसे मुख्तसर में इबादत कह सकते हैं का गौर फिक्र करते हुए ज़ईफ़ी और मौत से छूटने के लिए कोशिश में लगे हैं, वो इंसान मुकम्मल तौर से मुझे जान लेते हैं। वो मुकम्मल माबूद को, मुकम्मल रूहानियत को, मुकम्मल मखसूस देवता को, मुकम्मल अमल को और मुकम्मल यज्ञ के साथ मुझे जानते हैं। वो मुझ में दाखिल होते हैं और आखिरी वक्त में मुझको ही जानते यानी फिर कभी भूलते नहीं हैं। इस बाब में रूह मुतलक के मुकम्मल इल्म का तज्जिया है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे समग्र बोधः नाम सप्तमोध्यायः। इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुताल्लिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में इल्म मुकम्मल समग्र जानकारी समग्र बोध नाम का सातवां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवत गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये समग्र बोध नाम सप्तमोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवत गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में इल्म मुकम्मल समग्र जानकारी समग्र बोध नाम का सातवां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत्।